पहले दिन कर्तव्य पथ की बात हुई, दूसरे दिन अध्यात्म मार्ग की बात हुई, तीसरे दिन मिली जुली हुई, आज ये चौथा दिन है, आखिरी बैठक है। किसी भाई बहन के मन में कोई प्रश्न हो जीवन उपयोगी तो आरंभ में कर सकते हैं, क्योंकि आज चलते चलने गाड़ी ट्रेन पकड़ना है ना, चलते समय प्रश्नोत्तर के मौका नहीं मिलेगा, अभी तो समय का संकोच नहीं है। उत्साह हो किसी मन में कोई न उठे तो जबरदस्ती नहीं की जाए, इस दर्शन का उतना महत्व नहीं है इतना परमात्मा के प्रेम का महत्व है, क्योंकि बिना प्रेम के दर्शन होगा नहीं। जैसे बिना बिजनेस के धन नहीं मिलता तो धन का महत्व नहीं है, ऐसे ही परमात्मा का अगर प्रेम प्राप्त हो जाए तो दर्शन कोई असंभव नहीं है, संभव है जी। अच्छा है लेकिन प्रेम पहले आना चाहिए, और दर्शन हो जाएगा प्रेम न रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। हमारे और परमात्मा के बीच में जो दूरी मिटाने वाली चीज है वो भगवत प्रेम है, अपना मानने से जी। और कैसे होगा बताइए, और अपना मानने कैसे हो पूछो है, नहीं ममता नहीं, अपना मानना। और अपना मानना जो होता है वो तब होता है कि जिसको हम अपना माने उसका अपने पर पूरा अधिकार मान ले, यानी हमारे पास कोई चीज ऐसी न रह जाए जिस पर उसकी मोहर न लग जाए, तन उनका, मन उनका, धन उनका, वस्तु उनकी, प्राण उनके, और वे मेरे, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये सत्य आप नहीं स्वीकार करेंगे तब तक अपनापन निर्जीव सा रहेगा, सजीव नहीं होगा जी। नहीं नहीं, ममता क्यों शब्द के साथ, ममता तो होती है शरीर में, वस्तुओं में, देखी हुई चीज में, और प्रेम मेरे नाथ का मतलब ममता नहीं है, आत्मीयता कहो, अपनापन। मेरे नाथ का अर्थ होता है जो अपना हो, और नाथ कहते हैं उसको जो समर्थ हो, रक्षक हो। तो मेरे नाथ वाक्य का जो असली अर्थ है वो है निश्चिंतता, निर्भयता और प्रियता। जो आदमी अनाथ नहीं है, सनाथ है, उसमें निश्चिंतता, निर्भयता और प्रियता आनी चाहिए, ये तीनों चीजें आनी चाहिए, तब मेरे नाथ शब्द का अर्थ ठीक समझ में आता है। वैसे तो शब्द के पीछे जो अर्थ होता है वो तो सुना हुआ होता है, माना हुआ होता है ना। निसंकल्प का मतलब होता है कि चाहे तो जगत के संकल्प के में अपना संकल्प मिला दो, और चाहे प्रभु के संकल्प में अपना संकल्प मिला दो, तब निसंकल्प होकर निर्विकल्प हो सकते हैं। जगत के संकल्प में अपना संकल्प मिलाना ये धर्म विज्ञान है, और प्रभु के संकल्प में अपना संकल्प मिलाना ये आस्तिकवाद है, और निर्विकल्प होना ये अध्यात्मवाद है। भौतिकवाद का अर्थ क्या है, जगत के अधिकार की रक्षा करना, यानी जगत का जो संकल्प है उसको पूरा करना, और आशीर्वाद का अर्थ क्या है, प्रभु के संकल्प में अपने संकल्प को मिला देना, और निर्विकल्प होना क्या है, अध्यात्मवाद। अपने में संतुष्ट हो तो निर्विकल्प हो, तो अपने में संतुष्ट हो। प्रभु के संकल्प क्या होते हैं ये हमको नहीं मालूम है, प्रभु सत्य है, उनका संकल्प सत्य हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना संकल्प प्रभु के संकल्प में मिलने का मतलब यह है कि मेरा संकल्प है प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। अब प्रभु की क्या इच्छा है इसका मतलब ज्ञान थोड़ी है, वैसे तो प्रभु का दिया हुआ जो विवेक रूपी विधान है तो विवेक विरोधी इच्छा संकल्प प्रभु का हो नहीं सकता, विवेक के अनुरूप ही होगा, क्योंकि विवेक रूपी विधान प्रभु ने ही दिया है, आस्था का तत्व भी प्रभु ने ही दिया है, मूल रूप से बल का तत्व भी मिले ही है, मनुष्य के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो केवल मिले हुए के सदुपयोग की है। मनुष्य का अपना, मनुष्य के पास जो कुछ है वो तो उसका अपना व्यक्तिगत तो है नहीं। यही कारण है कि किसी भी मिली हुई वस्तु पर अपना स्वतंत्र अधिकार नहीं रहता, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं है। सृष्टि का जो मालिक है उसी वही मनुष्य का मालिक है, ऐसा है। मनुष्य को तो खाली ये स्वाधीनता है कि वो मिले हुए का सदुपयोग कर सकता है और उसी से उसका कल्याण हो सकता है।
है?
क्या कहना है? अच्छा, आप जो व्याख्यान मत दी थोड़े में कहिए। पहले तो आपने जो मेरे विचार के संबंध में अपनी राय कायम की है वो 100% सही नहीं है, कुछ हिस्सा उससे सही है। क्योंकि आपने अपनी तरफ मेरे मन कह, मैं तो ये निवेदन करता हूं कि विश्वास करना है तो परमात्मा में करो, जानना है तो अपने को जानो, और करना है तो सेवा करो। ये मैं कहता हूं, ये तो मेरा विचार है कि मानना परमात्मा को, जानना अपने को, करना सेवा। आपने उसको एक एक बात में बांध करके अपने मन की कल्पना कर ली, नाम बदल दिया। ऐसा मत करो भाई मेरे। अभी देखिए भजन गाय से क्या था, जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम उनसे कीजिए। ये जीवन का मनुष्य का प्रोग्राम है। सेवा का मतलब पहले दिन निवेदन किया था, बुराई रहित होना और यथाशक्ति भलाई करना। भलाई में इन्हीं बताया इतनी करो, यथाशक्ति जो संभव हो, और जिसके साथ संभव हो, और बिल्कुल संभव न हो तो बिल्कुल मत करो। केवल बुराई रहित होने से ही सेवा सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, भलाई करने से शरीर, परिवार और समाज की सेवा यथाशक्ति सेवा होगी। वैसे तो सारा समाज मिलकर एक व्यक्ति के अभाव को दूर नहीं कर सकता, सोचिए। तो सेवा का मतलब क्या है? यथाशक्ति हम अपना सुख दूसरे को बांट सकें, ये क्रियात्मक सेवा हुआ। और भावात्मक सेवा क्या हुई? हम किसी को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं, ये भावात्मक सेवा हुई। ये जगत के लिए उपयोगी है, और प्रेम परमात्मा के लिए उपयोगी है, और स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी है, ऐसा है। नहीं, किसका? परमात्मा के लिए प्रेम उपयोगी है, प्रेम परमात्मा के लिए उपयोगी है। अभी अब क्या आप जो बात कह, मैं कहता हूं उसको सुनकर उसको कुतने ही कहे तो प्रश्नोत्तर, नहीं तो दो व्याख्यान दाता हो जाएंगे। सुनना बोलना है एक को, तो दो व्याख्यान दाता ना बनो। संसार के संबंध में क्या है विचार करके देखो, शरीर और संसार का अविभाज्य संबंध है, दोनों में विभाजन नहीं हो सकता। देखिए, शरीर उत्पत्ति से जैसी जिस स्थिति में आज है, इससे पहले सबसे पहले इसकी पहली अवस्था क्या थी? माता का रज, पिता का वीर, तभी संसार में ही था। रजवीर का पूर्व रूप क्या था? खुराक। खुराक का पूर्व रूप क्या था? भूमि, जल, वायु, आकाश इत्यादि। यानी जो जिस धातु से सृष्टि बनी है उसी धातु से आपका शरीर बना है, मेरा शरीर बना है, सभी सारे संसार का शरीर उसी धातु से बना हुआ है। तो शरीर संसार से अलग नहीं हो सकता, चाहे इसमें कितना ही परिवर्तन हो जाए, ये संसार ही में रहेगा, संसार से बाहर शरीर नहीं जा सकता। एक बात। दूसरी बात यह कि शरीर के द्वारा हम संसार दो बातें कर सकते हैं, या तो सुख दुख का भोग करते हैं, सुख का भोग करते हैं अपनी मर्जी से और दुख का भोग करना पड़ता है बेबसी से, या किसी के काम आ सकते हैं यथाशक्ति सेवा कर सकते हैं, या तप कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त शरीर से सही ईमानदारी की दृष्टि से कहा जाए तो नित्य योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती। अब यहां यह मत समझिएगा कि आसन, प्राणायाम, धारणा, ये आसान योग है, उसमें आप विचार करके देखें कि नियम और नियम की अगर ठीक ठीक परिभाषा आप करेंगे तो वो शरीर कर्म धर्म नहीं है। जैसे अहिंसा को स्वीकार करना, सत्य को स्वीकार करना, ब्रह्मचर्य को स्वीकार करना, अप्रग्रह को स्वीकार करना, संतोष को स्वीकार करना, ईश्वर प्रदान को स्वीकार करना इत्यादि इत्यादि। किसी पंडित से पूछे ये तो पाठशाला का विषय हो जाएगा। तो नित्य योग शरीर के द्वारा नहीं मिल सकता, अपने स्वरूप का बोध शरीर के द्वारा नहीं हो सकता और प्रेम शरीर के द्वारा नहीं हो सकता। और मनुष्य के जीवन में जो मांग है, चाहे योग कहो चाहे चिर शांति कहो, बोध कहो चाहे जीवन मुक्ति कहो, प्रेम कहो चाहे भक्ति कहो, तो जिस शांति, मुक्ति और भक्ति की मांग है वो शरीर के द्वारा नहीं प्राप्त होता। एक दृष्टिकोण ये आपकी सेवा में है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि परमात्मा के संबंध में जो सुना वो और शरीर के संबंध में जो अनुभव हुआ वो, इन दोनों को सामने रखकर अब विचार करो कि भाई तुम मानते हो ना कि तुम्हारा व्यक्तिगत सत्य हो भले मान लो, पर इसको नहीं कहते भगवान सब में है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले अपने में भी तो है ना, तो पहले भगवान को प्राप्त करोगे पहले भगवान की सेवा करोगे। सब में का अर्थ होता है अपने में है प्राप्ति के लिए। अब सब में का अर्थ ये नहीं होता है पाखाने में भगवान है और पाखाने में पूजा करो, ये तो उसका अर्थ नहीं है ना। सब में का अर्थ होता है अपने में है, तो अपने में भगवान को प्राप्त करो। तर्क और चीज है और आस्था और चीज है, तो भगवान तो आस्था का विषय है, तर्क का विषय तो है नहीं। अब मनमानी मत करो, जो आपको स्वाधीनता दी जाती है प्रश्न करने की, तो मनमाना प्रश्न मत करो भैया। सब में है शरीर, सुनो, सब में है इसका अर्थ ये लगाना चाहिए हमारे विचार से कि अपने में है प्राप्ति। भगवान कहाँ है बोले सब में है। सब का सब सब में क्या कहो, सर्वत्र है, सदैव है, समर्थ है, अद्वितीय है, सभी का है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब में है तो कहां कहां पकड़ोगे। कोई बात सोचो, तुम किसी बहन से पूछना जब चावल पकाती है तो सारे चावल को टटोलती है कि एक दो को, बोलो। उसी के आधार पर सारी हड्डी का ज्ञान हो जाता है चावल पक गया। तो सब में है इस बात को का अर्थ यह है कि अपने में है। आप अपनी मर्जी से वैसे मानिए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप मानते नहीं है, पर मैं जो मानता हूं व्याख्यान का अर्थ होता है ना कि जो मैं बोलू तो मत बोलो भाई, मैं जो मानता हूं वो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको वो गलत हो तो आप मत मानिए। हाँ भाई, अब समय क्या हो गया। मानव सेवा संघ का ये प्लेटफॉर्म है और उसकी प्रणाली के अनुसार मुझे चर्चा करना है। मानव सेवा संघ कोई नया मजहब नहीं है, कोई इज्म नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई दल नहीं है। मानव मात्र का जो सत्य है उसी का नाम मानव सेवा संघ का सिद्धांत है। मानव सेवा का सिद्धांत क्या है, जो मानव का सत्य है। अब मानव का सत्य क्या है इस पर अगर विचार करके देखें तो हम अपने में दो चीजें देखते हैं। एक तो संसार का आकर्षण जिसको काम कहते हैं, और एक अविनाशी स्वाधीन रसरूप चिन्मय जीवन की मांग जिसको राम कहते हैं। मानव में केवल राम की मांग होती तो कोई समस्या नहीं सामने आती, और केवल काम की काम होता तब भी कोई समस्या नहीं आती। जैसे भोग योनि में सुख दुख भोगने के सिवाय और कोई समस्या है ही नहीं, और उसमें प्राकृतिक बंधन भी है, एक पशु बिना भूख नहीं खा सकता और एक भूख से यानी भूखा भी नहीं रह सकता, पशु की खुराक उसके सामने हो तो वो सोचेगा नहीं कि मेरी कमाई हुई है कि नहीं है, खा लेगा। तो इस लेकिन वो प्रकृति का बंधन में कितना जबरदस्त है कि बिना भूख नहीं खा सकता। आप देखिए चिड़िया है जो अपने छोटे बच्चे की, अपने मासूम बच्चे की के लिए अपने मुंह से दाना लाकर उसके मुंह में डाल देती है। एक सीमा तक उसकी ममता रहती है, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो चिड़िया उसकी परवाह नहीं करती। लेकिन यहाँ तो लड़का बड़ा हो जाए, और लड़के का लड़का बड़ा हो जाए, और उसका भी लड़का बड़ा हो जाए, क्या पुष्ट तक हम उसी की ममता नहीं छोड़ते। तो मनुष्य में और पशु में एक बड़ा भारी भेद यह है कि मनुष्य को किसी कुछ बातों में स्वाधीनता है। किन किन बातों में स्वाधीनता है? सत्य को स्वीकार करने में अथवा असत्य को अस्वीकार करने में पूरी स्वाधीनता है। अब इस स्वाधीनता का हम उपयोग न करके सत्य को स्वीकार न करें तो जीवन का सत्य क्या है हमारे सामने? बहुत गंभीरता से सोचें आप, तो ये साफ दिखाई देता है कि किसी भी वस्तु के साथ और व्यक्ति के साथ और अवस्था और परिस्थिति के साथ हम सदैव नहीं रह सकते। इस बात को हर आदमी मान लेगा। कोई कहे भाई ये जिस वाणी से मैं बोल रहा हूं, क्या ये वाणी अनंत काल के लिए इससे बोल सकता हूं? तो बोलने से पहले चुप था और बोलने के बाद चुप होना पड़ता है। तो कोई भी प्रवृत्ति अखंड नहीं हो सकती, और किसी भी वस्तु से नित्य संबंध नहीं हो सकता। या वस्तु शब्द का अर्थ लेना चाहिए जिसकी उत्पत्ति हो, जिसमें परिवर्तन हो, जिसका विनाश हो, उसको वस्तु कहते हैं। इस दृष्टि से ये सारा संसार एक वस्तु है। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य सदैव संसार के साथ नहीं रह सकता। लेकिन एक बात कर सकता है कि जिसके साथ सदैव नहीं रह सकता उसके साथ कोई बुराई नहीं। छोड़ दो कामना, छोड़ दो तादाद, छोड़ दो, लेकिन सेवा करो, सद्भाव रखो, सदुपयोग करो, यहां तक आप स्वाधीन हैं। इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। ये दुनियादारी की बात है। इसके ऊपर कि हम जब संसार के साथ सदैव नहीं रह सकते तो हमको अपने में संतुष्ट होना चाहिए, यानी संग में, संयोग में वियोग का, जीवन में मृत्यु का, सुख में दुख का दर्शन करके संसार से निर्मम, निष्काम और असंग होना चाहिए। ये अध्यात्म हो गया, अर्थात अपने में संतुष्ट हो जाना चाहिए। और इसको अच्छी भाषा में कहें, शास्त्रीय भाषा में, तो हमको पहले निष्काम होकर योगवित हो जाना चाहिए, और योगवित होकर आत्मवित होना चाहिए, और आत्मवित होकर के ब्रह्मवित होना चाहिए। ऐसा हमारी भारतीय परंपरा है। पहले हम कर्तव्यनिष्ठ हो, अर्थात जो करना चाहिए और जिसे कर सकते हैं वही करें, जो नहीं करना चाहिए सो न करें, जो नहीं कर सकते हैं सो न करें। तब हम जो आज ये कहते हैं कि हम कर्तव्य पालन में असमर्थ हो गए, ये असमर्थता नाश हो जाएगी, और जो कर सकते हैं, जो करना चाहिए करके हम संसार के राग से, अटैचमेंट से थोड़ा मुक्त होकर योगवित हो जाए, हमें योग की प्राप्ति कर लें, फिर आत्मवित हो जाए, फिर ब्रह्मवित हो जाए। योगवित ये भौतिकवाद है, आत्मवित ये अध्यात्मवाद है, और ब्रह्मवित ये आस्तिकवाद है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अगर ब्रह्मवित होने की मांग नहीं है तो छोड़ दीजिए औरों के लिए, अगर आत्मवित नहीं होना चाहते छोड़ दीजिए, योगवित तो आपको होना ही पड़ेगा। क्यों? क्यों? आप विचार करके देखिए कि आपका और जगत का, मानव का और जगत का सेवा का संबंध है, और सेवा का अंत जो होता है वो त्याग में होता है, और त्याग का जो फल होता है वो योग होता है। यानी योग एक ऐसा अनुपम तत्व है कि हम तो आप देखिए, किसी पढ़े लिखे विद्वान से पूछे ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, गीता के अध्याय के साथ क्या कौन सी उपाधि दी गई है, कि वो योग का शास्त्र है और ब्रह्म की विद्या है। ये हर अध्याय के अंत में यही कहा गया है, अर्जुन कृष्ण का सम्मान है लेकिन योग का शास्त्र है और ब्रह्म की विद्या है, ऐसा हम बड़े लोगों से सुना करते हैं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि सुने हुए सत्य को जरा जीवन के साथ मिला के देखिए तो मनुष्य ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का अधिकारी है, योग का अधिकारी है, और भोग जो उसके जीवन में है वो केवल साधन रूप भोग है, साध रूप भोग नहीं है। लेकिन मनुष्य को छोड़कर अन्य योनियों में तो, भोग योनियों में तो न ब्रह्म विद्या है न योग शास्त्र है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था महानुभावों से कि वो काम जिसके बिना करे आप रह नहीं सकते, वो कार्य के जिसमें किसी का अहित नहीं है, दो बातें, वो कार्य जिसका संबंध वर्तमान से है, वो कार्य जिसके करने की सामर्थ्य है, चार बातें, जिस काम में ये चार बातें हों, कौन कौन सी, जिसका वर्तमान का कार्य हो, जैसे भी मेरा काम बोलना है आपका सुनना है, ये वर्तमान कार्य हो गया। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का अहित हो, और बिना बोले रहा जाए तो बोलने की जरूरत नहीं, बिना बोले न रहा जाए तब बोलो, किसी का अहित न हो और जिसके करने, जिसके पूरे करने की स्वाधीनता हो, वर्तमान से संबंध हो, किसी का अहित न हो, उसको आवश्यक कार्य कहते हैं, उसको कर्तव्य कहते हैं, उसको धर्म कहते हैं। तो इस धर्म का पालन करने का फल क्या होता है कि हम कार्य के अंत में करने के राग से रहित होकर शांत को प्राप्त करते हैं। और जब हमारे जीवन में करने का राग नहीं रहता तब क्या होता है कि न तो हमारा स्थूल शरीर से तादात्म्य रहता है और न सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य रहता है, इन दोनों शरीरों से तादात्म्य टूट जाता है। स्थूल शरीर से तादात्म्य टूटने से निवृत्ति आ जाती है और सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य टूटने से अचिंतता आ जाती है। तो निवृत्ति और अचिंतता, लेकिन कारण शरीर के द्वारा हम योग को प्राप्त करते हैं, कारण शरीर का लेस रहता है योग में, समाधि तक कारण शरीर का तादात्म्य रहता है, बोध में जाकर कारण शरीर की निवृत्ति होती है और प्रेम में जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हमें कर्तव्य से योग की ओर और योग से बोध की ओर और बोध से प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है। इसी के लिए अभी जो गीत रोजाना होता है उसमें जग की सेवा खोज अपनी प्रेम उनसे कीजिए, मतलब क्या कि कर्तव्य का पालन कीजिए, अपने अपनी खोज कीजिए कि मैं क्या हूं और परमात्मा से प्रेम कीजिए। तो मैं शरीर नहीं हूं, ये सर्वमान्य सत्य है, शरीर संसार का एक अंग है, मेरा नहीं है, उसी का है जिसका संसार है, लेकिन हम भूल से शरीर को अपना मान लेते हैं और सारे संसार को अपना मानते नहीं। उसका परिणाम क्या होता है कि शरीर में ममता हो जाती है, फिर संसार की कामना उठने लगती है। अगर शरीर और संसार को हम एक मान लें और ये मान लें कि भाई अगर शरीर मेरा नहीं है तो संसार में कोई चीज मेरी नहीं है, सो न मान, या संसार मेरा नहीं है तो शरीर मेरा नहीं है, यदि शरीर को मैं अपना मानूं तो सेवा करने से, शरीर को अपना मानूं सेवा करने के लिए तो संसार को भी अपना मानूं सेवा करने के लिए। अब हमसे गलती क्या होती है कि शरीर को हम अपना मानते हैं भोग के लिए, बस यही मानव की सबसे बड़ी भूल है। शरीर का उपयोग मानव होकर हम केवल भोग में ही करेंगे तो परिणाम में रोग और शोक से बचेंगे नहीं, सुख के भोगी को विवश होकर दुख भोगना पड़ता है, इसमें किसी का बस आज तक चला नहीं, चलने से चलेगा नहीं। इसलिए ये कहा गया कि भाई शरीर का उपयोग सेवा में करो, भोग में मत करो। भोग में कर, इसका मतलब क्या है, सेवा का असली बाह्य रूप क्या है, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, ये सेवा का बाह्य रूप है। त्याग का रूप क्या है, बोले अपने अधिकार का त्याग करो। तो दूसरों के अधिकार की रक्षा करने से परस्पर एकता होगी, और अपना अधिकार छोड़ने से हमें नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जब हम देखिए संसार में संबंध दो ही तरह से रहता है, अगर आपको कुछ देना है तब भी संबंध रहेगा आपका, और लेना है तब भी रहेगा, और देना दे दिया जाए और लेना छोड़ दिया जाए तो संबंध टूट जाता है, फिर संबंध नहीं रहता। देना दे देने के बाद, लेना छोड़ देने के बाद संबंध नहीं रहता। जब संसार से संबंध नहीं रहता तब हमारे और परमात्मा के बीच में, हमारे और अविनाशी जीवन के बीच में, हमारे और स्वाधीन जीवन के बीच में, हमारे और चिन्मय जीवन के बीच में पर्दा क्या था, आवरण क्या था, संसार का संबंध आवरण था, संसार आवरण नहीं था। और जब वो संबंध टूट गया तो हमें योग प्राप्त हो गया, बोध प्राप्त हो गया, प्रेम प्राप्त हो गया। ये कोई कल्पना नहीं है, ये जीवन का सत्य है कि अगर हमारे संसार के बीच का संबंध टूट जाए, जो कि वास्तव में है नहीं, हमारा और परमात्मा का तो जाति संबंध भी है, नित्य संबंध भी है, आत्मिक संबंध भी है। हमारे और संसार का न जाति संबंध है, न नित्य संबंध है, न आत्मिक संबंध है। तो क्या है कि हमारे पास जो शरीर है वो संसार की धरोहर है, तो शरीर के द्वारा परमात्मा और जगत का जो मालिक है, जगत का जो आधार है वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के नाते अगर जगत की सेवा करें तो हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति पूजा हो गई, और आत्मा के नाते जगत की सेवा करें तो साधना हो गई, और जगत के नाते जगत की सेवा करें तो कर्तव्य हो गया। अभी आपकी अपनी मौज है, आप स्वाधीन है, चाहे आप भौतिकवादी दृष्टिकोण से जगत के ही अस्तित्व को माने और किसी को न माने, आपकी मौज। अध्यात्मवाद के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण से आप अपने अस्तित्व को माने और आस्तिकवादी दृष्टिकोण से आप परमात्मा के अस्तित्व को माने, ये आपकी स्वाधीनता है। लेकिन जगत के अस्तित्व को मानकर भी कर्तव्य का अंत योग में ही होगा, आत्मा के अस्तित्व को मानकर भी कर्तव्य का अंत योग में ही होगा, और परमात्मा के अस्तित्व को मानकर भी कर्तव्य का अंत योग में ही होगा। ये जीवन का विज्ञान है। सही काम करने से हमें योग प्राप्त होता है, ये जीवन का विज्ञान है। ईश्वरवादी दृष्टि से योग का अर्थ है परमात्मा की समीपता, और अध्यात्मवाद की दृष्टि से योग का अर्थ है अपने स्वरूप का बोध, स्वरूप में स्थिति, और भौतिकवादी दृष्टिकोण से योग का अर्थ है चिर शांति। तो चिर शांति, स्वरूप में स्थिति, परमात्मा की समीपता, किसी प्रकार से इस सत्य को आप स्वीकार करें या इसका कथन करें तो मुझे तीन ही बातें ठीक मालूम होती हैं, और होंगी तो मुझे मालूम नहीं है। या तो हमको चिर शांति प्राप्त हो गई, या हमें अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, अथवा परमात्मा की समीपता प्राप्त हो गई। तो समीपता, स्वरूप स्थिति और चिर शांति, ये किसका नाम है? योग का नाम है। योग माने चिर शांति, योग माने स्वरूप में स्थिति, योग माने परमात्मा की समीपता। अब ये आग्रह मत करो, व्यक्तिगत भिन्नता जीवन का एक सत्य है, ये आग्रह मत करो कि मैं परमात्मा को मानता हूं तो सभी परमात्मा को मान ले, ये आग्रह मत करो, और मैं आत्मा को मानता हूं तो सभी आत्मा को मान ले, ये आग्रह मत करो, या और मैं संसार को मानता हूं तो संसार, सारा संसार भौतिकवादी बन जाए, या सारा संसार अध्यात्मवादी बन जाए, या सारा संसार आस्तिकवादी बन जाए। तो मानव शासन की साधन प्रणाली में ये बात बताई गई कि ऐसा आग्रह मत करो। हाँ, तुम स्वतंत्र हो भौतिकवादी होकर संसार के साथ कर्तव्य का संबंध रख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर शांति आपको मिलेगी। अध्यात्मवादी होकर भी संसार के साथ कर्तव्य का संबंध रख सकते हो, जीवन मुक्ति आपको मिलेगी, और परमात्मा को मानकर भी कर्तव्य का संबंध रख सकते हो, आपको भक्ति मिलेगी। तो चिर शांति, जीवन मुक्ति, भक्ति, आरंभ में ये तीनों अलग अलग मालूम होते हैं साधन रूप से, अंत में तीनों में स्वरूप से एकता हो जाती है। चिर शांति और मुक्ति और भक्ति में अविभाज्य संबंध है। जहां चिर शांति है वहां मुक्ति आ ही जाएगी, या मुक्ति है वहां भक्ति आ ही जाएगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है।